चाचा चौधरी, साबू, पिंकी, बिल्लू, रमन और श्रीमती जी। जी बिल्कुल, क्या आप कभी भूल सकते हैं इन किरदारों को? और इन किरदारों को रचने वाले हैं प्राण कुमार शर्मा, जिन्हें दुनिया भर में कार्टूनिस्ट प्राण के नाम से जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में और भी उन्हीं की जुबानी। प्राण साहब, ये बताइए कि चाचा चौधरी, साबू, पिंकी, बिल्लू, रमन, इस तरह के दिलचस्प किरदारों का ख्याल आपको कैसे और कहां से आया?
ये बात है 1960 की, आज से करीब 48 या 47 साल पहले की, जब मैंने अपना एमए पॉलिटिकल साइंस में पास किया, 4 साल का फाइन आर्ट्स में डिप्लोमा लिया सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट बॉम्बे से, तो मेरे सामने करियर का सवाल था। और उस वक्त मैंने देखा कि हमारे इंडिया में जितने भी कॉमिक्स हैं वो सारे के सारे वेस्टर्न कंट्री से आते हैं, जैसे फैंटम, ब्लॉन्डी, डेनिस द मीनर, सुपरमैन वगैरह। तो मुझे लगा कि अगर हम अपने भारतीय पात्रों को लेके और भारतीय विषयों पर कॉमिक्स बनाएं तो वो हमारे लोगों के ज्यादा करीब होंगी, वो उनको समझ सकेंगे और इस तरह वो ज्यादा एंजॉय करेंगे। और ये सोच के मैंने कॉमिक्स बनानी शुरू की। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझसे पहले कोई और इंडिया में कार्टूनिस्ट नहीं थे, थे जो मुझसे भी ज्यादा सुपीरियर थे और मुझसे ज्यादा टैलेंटेड थे, जैसे शंकर, आर के लक्ष्मण, मारियो, अहमद वगैरह, लेकिन वो सब पॉलिटिकल कार्टून्स बना रहे थे। उस वक्त इंडिया में कोई भी कॉमिक्स नहीं बनाता था, तो
जी,
ये दोष के मैंने कॉमिक्स बनाने शुरू की।
चाचा चौधरी और साबू को आपने कहां से उठाया?
वो ये था कि मैं चाहता था कि मेरा कॉन्सेप्ट जो करेक्टर का हो वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से बिल्कुल डिफरेंट हो, अपोजिट हो। जैसे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट क्या था कि एक बड़ा टॉल, हैंडसम और रबेस्ट हीरो, जिस तरह सुपरमैन वगैरह, फैंटम, ये सब, उसके जस्ट अपोजिट हमारा चाचा चौधरी एक आम भारतीय की तरह ठिकना है और मतलब बूढ़ा है और मतलब वो ज्यादा खूबसूरत या हैंडसम भी नहीं है,
लेकिन दिमाग तो कंप्यूटर की तरह तेज चलता है उनका।
हाँ, वो मुझे ख्याल आया कि हम, आपको याद होगा कि हमारे पुराणों में एक करेक्टर था चाणक्य का,
जी,
वो बड़ा दानिशमंद था। और इसी तरह चाइना से कन्फ्यूशियस आया, हमारी जो विजडम है ओरिएंटल कंट्रीज की वो वर्ल्ड में मानी हुई है, तो मैंने कहा कि ये जो विजडम है, एक दानिशमंदी है, ये भी अपने आप में एक ताकत है।
जी प्राण साहब, आज आप भारत के महान कार्टूनिस्टों में से शुमार किए जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि आप भारत के वॉल्ट डिज्नी हैं। ये सब कामयाबी पाकर आप कैसा लगता है आपको?
ये आपकी जरा नवाजी है, मैं अपने आप को एक मामूली इंसान समझता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ और मुझे खुशी है कि ये कॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट जो है वो इनोसेंट बच्चे जो होते हैं उनका सब्जेक्ट है, मैं उनको खुशी देता हूँ। इससे बड़ी मेरी कामयाबी और कोई नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री में ये रिवाज है कि एक करेक्टर बनाओ और वो सारी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है सिंडिकेट होके, और कार्टूनिस्ट को पूरी दुनिया से इतना पैसा आ जाता है कि वहां पे अमेरिका में कई कार्टूनिस्टों के अपने हवाई जहाज हैं। तो यहाँ पे ये हालत थी कि कई न्यूज़पेपर, जैसे पराग था, उसने ये कहा भाई हमें बच्चों का चाहिए, तो मैंने उनके लिए बिल्लू बनाया, फिर पिंकी बनाई, फिर वो मनोरमा जो लेडीज की मैगजीन और श्रीमती जी निकलती थी, उन्होंने ये कहा भी हमें हाउसवाइफ चाहिए, क्योंकि हमारी महिलाओं की मैगजीन है, तो उनके लिए मैंने श्रीमती जी बनाई जो कि एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ है। तो इसी तरह मैंने कई करेक्टर मैं क्रिएट करता था।
जी 15 साल पहले तक की बात करें तो बच्चों पर कॉमिक्स की दीवानगी थी, खासकर मैं प्रिंट कॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन अब उसकी जगह टीवी आ गया है और उस पर बहुत सारे कार्टून चैनल हैं जिनमें ज्यादातर विदेशी हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इससे जो हमारे देसी कार्टून किरदार थे उनके लिए कुछ मुश्किलें पैदा हुई हैं?
देखिए, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं पिछले 7-8 साल से पूरे विश्व में घूम रहा हूँ, सारे कंट्रीज में मैं गया। वहाँ पे जो इंटरनेशनल कार्टूनिस्टों की कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पे मुझे लेक्चर देने के लिए बुलाया गया और मुझे उन्होंने कहा बोलने के लिए। वहाँ पे मैंने महसूस किया जो दूसरे कंट्रीज के जो कार्टूनिस्ट आए हुए हैं, करीब 200-250 कार्टूनिस्ट, ठीक है ना
जी।
जब मेरा नंबर आया बोलने के लिए तो मैंने उनसे कहा कि ये दोनों चीजें जो हैं ये एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है। अगर ये दोनों चीजें आपस में कोऑपरेशन करें, टेलीविजन एंड प्रिंटेड कॉमिक्स,
जी,
तो ये एक दूसरे के सहायक हो सकते हैं। मैंने उनको अपना एग्जांपल दिया कि 2002 में सहारा चैनल मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हम आपके चाचा चौधरी के ऊपर टीवी सीरियल बनाना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, बड़े शौक से बनाइए। और जब ये टीवी सीरियल की कुछ एपिसोड टेलीकास्ट हुई तो मेरा प्रिंटेड कॉमिक का सर्कुलेशन बढ़ गया। और जब प्रिंटेड कॉमिक का सर्कुलेशन बढ़ गया, उसका असर टेलीविजन सीरियल पे पड़ा, उनकी व्यूअरशिप बढ़ गई। और आप ये देखिए, ये चाचा चौधरी टीवी सीरियल 600 एपिसोड तक चली, पूरे लगातार 3 साल तक, जो कि एक रिकॉर्ड था उस वक्त। मैंने उनको ये एग्जांपल दिया, लेकिन इसके लिए आपका पहले से हार्ड वर्क और आपका करेक्टर की पॉपुलैरिटी होना चाहिए
जी।
कोई भी प्रोड्यूसर, फिल्म प्रोड्यूसर जो होता है वो करोड़ों रुपए लगाता है, तो उसको एश्योरेंस होना चाहिए कि मैं एक पॉपुलर करेक्टर के ऊपर फिल्म या टेलीविजन सीरियल बना रहा हूँ जो कि फ्लॉप नहीं होगी।
कार्टून किरदारों के साथ खेलने के अलावा आपके और क्या क्या शौक हैं?
मेरे शौक हैं कि अपने सब्जेक्ट्स के लोगों से मिलूं, और मैं जगजीत सिंह की गजलें सुनता हूं, उनका बड़ा दीवाना हूं। और मुझे सिर्फ अफसोस है, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे देश में, भारत में कोई कार्टून्स का म्यूजियम नहीं है। मैं ब्रसल्स गया, ऑस्ट्रेलिया गया, अमेरिका गया, यूरोप, पेरिस और एम्स्टर्डम, सब जगह कार्टून्स के म्यूजियम्स हैं जो कि उन्होंने मुझे दिखाए, के पुराने ओरिजिनल फैंटम सुपरमैन की ड्राइंग्स दिखाई, लेकिन हमारे कंट्री में ये म्यूजियम नहीं है। मैंने इस देश को एक ओरिजिनल करेक्टर दिया चाचा चौधरी के नाम से, जो कि दुनिया में पहले नहीं था।
बिल्कुल सर।
और हमारे यही नहीं है, हमारे जो पुराने कार्टूनिस्ट थे जैसे शंकर अहमद और कुट्टी और आर के लक्ष्मण वगैरह, इन्होंने अपने ढंग से फ्रीडम स्ट्रगल लड़ा। आज कोई भी नहीं जानता कि उनके ओरिजिनल कार्टून कहाँ है वो। अगर लोगों को एक म्यूजियम में इनके वो ओरिजिनल कार्टून्स या कॉमिक्स जो है वो देखने को मिले तो लोग खुश होंगे, लोगों की लाइन लग जाएगी। मैंने देखा है यूरोप में जो कार्टून्स और कॉमिक्स के म्यूजियम है वहाँ लाइन लगी हुई है, टिकट लगाए हुए हैं, इससे रेवेन्यू भी आता है। हमारे देश में अब मैं क्या कहूँ, कोई इस तरफ ध्यान नहीं
जी।